जीवन है।
यह प्रवचन चंड गोपी प्रभु के द्वारा राधा गिरधारी मंदिर नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव के दिवस के ऊपर।
ये तीनों किताब के बाहर और बहुत सारे गौरी आचार्य जो पुराना पुराना किताब है उसमें नितान का बारे बहुत कुछ वर्णन है। जैसा कि नितान प्रभु का पिताजी हराई पंडित, जिसको नाम है हराई पंडित, लेकिन हराई पंडित परिचित है ओझा सरनेम से। इस ओझा सरनेम तत्कालीन समय में उसी प्रकार व्यक्ति को मिलता था जो कि अपना मंत्र तंत्र के द्वारा कोई जादू दिखा सकते थे। तत्कालीन समाज इसी ओझा सारण्य को इसी तरीके से प्रयोग करते थे। तो नित्यानंद प्रभु का पिताजी हराई पंडित, उन्होंने शुरू में विष्णु भक्त नहीं थे, शिव जी का भक्त। और शिव जी का भक्त होने का नाते शिव जी का चरण में हर दिन पुष्प देने के लिए वो एकदम सुबह में ब्राह्म मुहूर्त में उठकर वो जाते थे बाहर बाहर में, तो शिव जी का जो मन पसंद पुष्प होता है वो चुराने के लिए। तो हराई पंडित और उनका धर्म पत्नी पद्मावती देवी, पद्मावती देवी जब बहुत ज्यादा साल उम्र में ये हराई पंडित और पद्मावती देवी का शादी विवाह हुई थी। इसके भी कारण बहुत सुंदर तरीका से वर्णन की है शास्त्र में, जिसमें वर्णन है कि नित्यानंद चरित कथा में कि पद्मावती देवी का पिताजी तत्कालीन समय में उसी गांव का एक बड़ा जमींदार, मतलब बहुत पैसा वाले आदमी थे, लेकिन माता पिता बहुत ढूंढने लगे कि अच्छा कोई पात्र मिल जाए तो हमारा बेटी, एक ही बेटी है पद्मावती, उनको साथ किसी को मैं शादी करा दूँ। लेकिन ढूंढते ढूंढते वो दोनों परेशान हो गए थे। शास्त्र में वर्णन की कि एक दिन पति पत्नी दोनों में झगड़ा चालू हो गए। तो पत्नी कहने लगी कि देखो आप जरा अच्छा से ध्यान से नहीं देख रहे हो, ये आपका कारण मेरा बेटी का शादी नहीं हो रहा है। पति गुस्सा हो गई, बोले मैंने इतना कष्ट कर रहा हूँ, मेरा पूरा ये मैं सब कुछ देखभाल कर रहा हूँ, फिर भी इसका बीच बीच में मैं अपना बेटी के लिए मैं पात्र तो ढूंढ रहा हूँ, फिर भी आप इसी तरीके से बोल रहे हो। सर्वचंद्र ठाकुर वर्णन कर रहे कि कलहो करो कहना कलहो ना यार, यदि यो मन सुखे करो आगे बार बार। बोलते इस युग में कलह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है हर परिवार में। ऐसा कोई परिवार नहीं जिस परिवार में कोई झगड़ा नहीं होता है। भले भी वो आरोप प्रति प्रति हो कि जो झोपड़ी में रहते हो भी। लोचनदास ठाकुर इसके ऊपर वर्णन किए कि कलह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति व्यक्ति का था। दोनों में झगड़ा चालू हो गए। तो झगड़ा होने के बाद उन्होंने सोच ली कि ठीक है आज अपने झगड़ा की मेरे साथ, कल सुबह मैं पहला जिनको मेरे को दर्शन मिले उसके साथ मेरा बेटी का मैं शादी कर दूँ। ये तो बोल दिए पत्नी को। पत्नी तो खुश हो गई सुनकर, लेकिन भाले भी वो पिता है, पिता का मन में हर समय रहते हैं कि मेरा बेटी को इसे एक अच्छा घर में शादी हो जाए जिसके लिए मेरा बेटी सुखी रहे। तो पूरा रात भर ये उन्होंने सोचने लगे, लेकिन नींद नहीं हुआ पूरा रात। ब्राह्म मुहूर्त में देखा कि पति पत्नी दोनों उठ गए, खिड़की खोल दिए, सामने सामने एक बहुत ही सुंदर बगीचा। तब बगीचा से जब उन्होंने बाहर देखा, देखा कि हराई पंडित बोलकर एक नव युवक विधुभूषण गोस्वामी बोलकर नित्यानंद प्रभु का एक परम शिष्य है, जिन्होंने इस चरित कथा को वर्णन किया ग्रंथ में कि जब दोनों पति पत्नी ये खिड़की खोल दी, सामने देखा कि एक नव युवक सोम दस दिखने में एकदम खूबसूरत, तो अपना सेवक को बुलाकर उसी नपुंज लोग को घर में बुला लिए। जब घर में बुला लिए, बुलाने के बाद पहले पूछा कि आप क्या करते हैं। स्वाभाविक रूप से सब माता पिता अपना बेटियों का जब शादी वगैरह होता है किसी के साथ संबंध बनाने का पहले पूछ लेते हैं कि लड़का क्या करते हैं। तो जब हराई पंडित को पूछा, हराई पंडित ने बताया कि मेरा ये की कर्म होता है वो ओझागिरी कर्म। तत्कालीन समाज व्यवस्था में ओझा इसी व्यक्ति को बोलते हैं जो कि कुछ जादू मंत्र के द्वारा किसी को प्रभावित कर सकते। तो पद्मावती देवी के पिताजी ने पूछने लगे, आप जिस कर्म के द्वारा चला रहे हो अपने को, इसी में आप सुखी हो? बता, मैं तो सुखी नहीं हूं लेकिन फिर भी मेरे को ये कर्म अच्छा लगता है। तो बता, हर दिन सुबह आप क्यों ऐसा घूमते रहते हो? बताए, मैं शिव जी का परम भक्त हूं तो शिव जी के लिए मैंने कुछ पुष्प वगैरह लेकर जाता। तो बाद में ये पद्मावती देवी का पिताजी जाकर हराई पंडित का पिताजी के साथ बातचीत की। ये हराई पंडित किस तरीके से उनका नाम हुआ, पहले उनका नाम था नित्यानंद प्रभु का पिताजी का नाम था मुकुंद बंदोपाध्याय। बंगाल समाज में आज भी एक विशेष रूप से चार प्रकार सरनेम होता है जिसको ब्राह्मण कैटेगरी में टॉप क्लास ब्राह्मण बोलते हैं। भोपाल जी को एक बार कोई व्यक्ति पूछा था, मतलब भोपाल जी किसी के साथ बातचीत कर रहे थे तो एक ऐसा एक ब्राह्मण व्यक्ति आए, तो भोपाल जी उनके साथ तो बातचीत भी नहीं की। तो उन्होंने इतना गुस्सा होकर भोपाल जी को कहने लगे कि स्वामी जी, यू नो फ्रॉम वेयर आई कैम, आई एम ए ब्राह्मण फैमिली, आई एम ए क्लास वन ब्राह्मण फैमिली। तो भोपाल जी पूछने लगे कि आपका सरनेम निश्चित रूप से कुछ बैनर्जी चटर्जी गंगुली ऐसा कुछ होगा, क्योंकि बंगाली समाज में आज भी एक विधि होता है कि ब्राह्मण में जो फर्स्ट कैटेगरी ब्राह्मण जिसको कहते हैं उसका सरनेम होता है बैनर्जी चटर्जी गंगुली, ऐसा चारों टाइटल होता है। तो ये हराई पंडित का पिताजी जो है उन्होंने क्लास वन कैटेगरी मतलब सरनेम तो उनका बंद बंधा है। उनका पहला नाम था मुकुंद बंदोपाध्याय। और ये मुकुंद बंदोपाध्याय कैसे हराई पंडित कैसे हराई ओझा बने इसका बहुत सुंदर लीला का व्याख्या है। मुकुंद बंदोपाध्याय जब 8 साल उनका उम्र तब से उन्होंने ये शिव जी का भक्त बने थे और हर दिन जाकर शिव जी को उन्होंने शिव जी का जो परम प्रिय पुष्प होता है वो शिव जी का चरण में चढ़ाते रहते थे। आज भी वो शिव मंदिर है एक चक्र गांव में जहां पे स्वयं नित्यानंद प्रभु आपने प्रकटित की थी। और ए नित्यानंद प्रभु हराई पंडित पद्मावती का घर में आए। सबको पता है कि बच्चा जब मातृ गर्भ में रहते हैं तो 10 महीना 10 दिन रहना पड़ता है, लेकिन पद्मावती देवी जब नित्यानंद प्रभु पद्मावती देवी का गर्भ में प्रकटित हुए उसी समय से पद्मावती देवी एवं हराई पंडित दोनों देखने लगे कि कौन कौन विशेष विशेष व्यक्ति उनके घर में आकर उनको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो इसी परिवार में नित्यानंद प्रभु एक चक्र ग्राम जिस एक चक्र का महत्व महाभारत में भी वर्णित है। इस एक चक्र का अर्थ होता है रथ का एक चक्का, रथ का एक व्हील जिसको बोलता है जिसमें 24 प्रकार का दंड रहते हैं, इसी जगह का नाम है एक चक्र। इस एक चक्र का महत्व वर्णन महाभारत में भी है। इस एक चक्र गांव में नित्यानंद प्रभु माघ महीना का त्रयोदशी तिथि में नित्यानंद प्रभु प्रकटित हुए थे। और इस हराई पंडित जिनका सारनेम था पहले मुकुंद बंदोपाध्याय बैनर्जी, जिनका 8 लड़का थे, 8 लड़का में सबसे बड़ा लड़का का नाम है नित्यानंदा। और ये जो 8 लड़का है हराई पंडित ये 8 लड़का का नाम पे लास्ट में आनंद बोलकर एक शब्द को नियुक्त किए थे। पहला जो लड़का है उसका नाम है नित्यानंद, दूसरा लड़का का नाम है कृष्णानंद, तीसरा है सर्वानंद, चौथा नंबर में है ब्रह्मानंद, पांचवा है पूर्णानंद, छठा है प्रेमानंद, सातवा है विशुद्धानंद, और आत्मा का नाम है लक्ष्मीनंद। श्री प्रभुपाद जी ये जो लास्ट नेम में जो आनंद शब्द को नियुक्त किए हैं, भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर, अलग अलग वैष्णव आचार्य इस आनंद का शब्द का महत्व को विचार किए थे। श्री गोपाल जी इस आनंद के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीका से टिप्पणी बताए, जो कि भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर पहले टिप्पणी बताई आनंद के बारे कि क्यों ये हराई पंडित अपना आठ पुत्र का सबका नाम का पीछे ये आनंद शब्द को नियुक्त किए थे। इस आनंद शब्द का नियुक्त करने का व्यवहारिक तात्पर्य यही है कि कोई बच्चा अगर आनंद इसी शब्द को हर बार उच्चारित करे मन से तो जिंदगी भर वो आनंद में रह सकते हैं और दूसरा को आनंद दिला सकते हैं, जिसके लिए नित्यानंद प्रभु का नाम हो गया था नित्यानंद। मतलब हर समय नित्य आनंद जो है वही नित्यानंद जो कि हर व्यक्ति को आनंद दिला सकते हैं। इसके लिए शास्त्र में वर्णन किया है कि नित्य कोरोना होइले ब्रजे राधा कृष्ण पावे, और राधा कृष्ण का जुगल मिलन रूप जो है ये कलि युग का पावन अवतार महावदन्य अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो यही नित्यानंद प्रभु का कृपा बिना हम लोग राधा कृष्ण का प्रेम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और इस कलि युग में राधा कृष्ण का मिलन तोनु कौन ना कलि युग का पावन अवतार महावदन्य अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिसके लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का कृपा अगर किसी को प्राप्त करना है तो पहले नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु हर व्यक्ति को कृपा देते रहते हैं। महाप्रभु शुरू में किसी को कृपा नहीं की थी, जगाई माधाई ने जब अपराध की, अपराध करने के बाद माधाई जाकर जब महाप्रभु के चरण में जाकर क्षमा मांगी, फिर भी महाप्रभु उनका कृपा नहीं की थी। तो पहले जब नित्यानंद प्रभु ने कृपा की, बाद में उन्होंने कृपा की। इसके लिए नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं बहुत सुंदर एक कथा है, एक बहुत सुंदर इसमें प्यार छंद में लिखे है, जो कि बहुत साल बाद इसका एक फेमस संगीत भी बन रहे थे इसके ऊपर, जिसमें लिखे है नरोत्तम दास ठाकुर कि ताबोले की प्रेम देवे ना जदि मारी कोलशी रिकाना नेशार झोके जदि जगाई माधाई ना थकतो तबे निमाई के की चिंतो। नरोत्तम दास ठाकुर इसको प्यार छंद में रचना की, ताबोले की प्रेम देवे ना जदि मारी कोलशी रिकाना नेशार झोके जदि जगाई माधाई ना थकतो तबे निमाई के की चिंतो। तो ये नित्यानंद प्रभु कृपा करने के लिए सबके पास पहुंच जाते, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का मन में एक अभिलाष कि ना चैतन्य महाप्रभु को कृपा सबको प्राप्त करना है। नित्यानंद प्रभु किस तरीके से कृपा करते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा हम लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी इतना बड़ा घर का लड़का है, इतना बड़ा घर का लड़का होने के बाद भी महाप्रभु शुरुआत में उनका कृपा नहीं की। जब जगन्नाथपुरी में रघुनाथ दास गोस्वामी पहली बार मिलने के लिए आए श्री चैतन्य महाप्रभु को, तब महाप्रभु कहने लगे कि मर्कट वैराग्य दिखाइयो ना आज, मर्कट वैराग्य दिखाइयो ना आज। मर्कट का अर्थ होता है बंदर, तो बंदर का स्वाभाविक रूप से बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ में पहुंच जाते, किसके लिए मतलब जम करते हो तो उनको किसी के साथ संभोग करना है, लेकिन देखा था कि मैं एक पेड़ से दूसरा पेड़ में मैं पहुंच जाता हूं, मेरा कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन आसक्ति का पूर्ण रूप से स्त्री बंदर के ऊपर है। आज इसके लिए एक पेड़ से जम करके दूसरा पेड़ में पहुंच जाते हैं, इसके लिए महाप्रभु कहते कि मर्कट वैराग्य दिखाइयो ना, जाओ गिया घरे गिया करो गृहस्थ तेरो अनाचार। रघुनाथ दास गोस्वामी बड़ा दुखी हो गए कि मैंने महाप्रभु को मिलने के लिए इतना दूर से मैंने आया हूं, लेकिन महाप्रभु मेरे को वापस लौट दिए। बताओ जाओ घोड़े की या करो तुम गृहस्थ रो आचार, या आप घर में जाओ जाके जिस तरीके से गृहस्थ को रहना चाहिए उसी तरीका सब रहो। दुखी मन लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी वापस आए, अपना माता पिता सोचने लगे कि देखो मेरा बेटा ने कितने अच्छा हो गए, घर में वापस आ गए, उन्होंने शादी करा दी, एक अवसर समो लड़कियों के साथ शादी हुई उनका रघुनाथ दास के साथ। लेकिन जिनका मन कृष्ण पधारो विंदे, उनको दूसरा कोई भी हिला नहीं सकता है कभी। तब रघुनाथ दास को सभी सोचने लगे मैं मेरे को किस तरीके से मेरे को चैतन्य प्रेम प्राप्त करना है। इसी तरीके से सोचते सोचते एक दिन उनका मन में भावना है कि जब तक मेरे को नीताई का कृपा नहीं मिली तब तक माँ को मेरे को कृपा नहीं करेंगे। तब उन्होंने सुन लिए कि पानीहाटी बोल के एक गाँव है जहां पे स्वयं नित्यानंद प्रभु अपना पार्षद बिंद को लेकर आ रहा है। पहले उन्होंने सुन लिए थी बात कि नित्यानंद प्रभु आ रहे पानीहाटी में। पानीहाटी में आने में उनको राघव पंडित बोल के एक महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एक अंतरंग प्रिय पार्षद है जिनका घर में उनका कुछ भोजन कीर्तन का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नित्यानंद प्रभु नाव में बैठकर उन्होंने पहुंच गए थे पानीहाटी में। तत्कालीन समय में ऐसा कोई बास ट्रेन ऐसे कोई बंदोबस्त नहीं था, एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं था, नहीं तो पदभोज में तो नहीं तो चल के आना पड़ता, नहीं तो नाव में बैठ कर आना पड़ता। तो नित्यानंद प्रभु अपना पार्षद बिंद को लेकर पहुंच गए थे पानीहाटी में। जब पानीहाटी पहुंच गए तो रघुनाथ दास को समय सोच लिए कि ये जीवन में मेरा एक अच्छा मुहूर्त तो आ गया है नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त करने का। रघुनाथ दास को समय रहते थे समस्तीपुर का एक जिला है जो कि आज का दिन में बिहार में है। तो समस्तीपुर से पानीहाटी कितना दूर सोच लीजिए कि पटना से कलकत्ता। तो पानिया समस्तीपुर से रघुनाथ दोस्तों से भी सब सुन लिए कि नित्यानंद प्रभु आए। तो रघुनाथ दास को सोचने लगे कि जीवन में मेरा एक मौका आ गए एक रघुनाथ दास गोस्वामी को कि मेरे को नित्यानंद का कृपा प्राप्त करना चाहिए। पैदल उन्होंने पहुंच गए समस्तीपुर से इसी पानीहाटी में। जब पानीहाटी में पहुंच गए थे तब देखा कि नित्यानंद प्रभु अपना पार्षद बिंद को लेकर गंगा का तट में जल के लिए उत्सव कर रहे हैं। जल के लिए का अर्थ था जल में जाकर आनंद लेना, जिसको सीधा भाषा में कहते हैं कि जल में जाकर आनंद लेना, पानी में डूबकर आनंद लेना, उसको कहते हैं कि जल के लिए उत्सव। तो जल के लिए उत्सव कर रहे थे नित्यानंद प्रभु अपना पार्षद बिंद को लेकर। तो दूर से रघुनाथ दास ने नित्यानंद प्रभु को देखकर धन्यवाद प्रणाम की। कोई पार्षद जाकर नित्यानंद प्रभु को बताए कि देखो प्रभु जी आपको मिलने के लिए रघुनाथ दास को समय आ गए। हाँ रघुनाथ दास के तत्कालीन समाज में एक जमींदार घर का एक ही बेटा है जो कि हिरण्य गोवर्धन, इसका बहुत बड़ा कहानी है, शॉर्ट टाइम में मैं नहीं जा रहा उसमें। तो हिरण्य गोवर्धन का एक ही लड़का है रघुनाथ दास के समय, जिसका तत्कालीन समय में उनका ईयरली इनकम था 20 लाख रुपए। सोच लीजिए कि आज से 500 साल पहले किसी का अगर ईयरली इनकम हो सकता है 20 लाख, तो आज का दिन में वैल्यूएशन कितना हो सकता है। तो यही रघुनाथ दास को समय नित्यानंद प्रभु को देखकर दंडवत प्रणाम किए, जिस जगह का नाम है दंड पानी तला। ये दंड पानी तला क्यों हुए थे ना, रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने दंड दिए थे, मतलब पानिशमेंट दिए। पानिशमेंट कब मिलता है, जब आपका कुछ अपराध बगड़े होता है, जब आपने कुछ मतलब आइन को उल्लंघन किए तब आपको पानिशमेंट नहीं तो दंड मिलता है। जरा आगे आ जाइए, तो तब दंड मिलता है। पूरा गौड़ीय वैष्णव समाज सोचने लगे कि अरे रघुनाथ दास गोस्वामी इतना बड़ा घर का लेकर होकर नित्यानंद प्रभु उसको क्यों दंड दिए। तो नित्यानंद प्रभु के हाथ में एक दंड था, वो लेकर उन्होंने पूछ गए थे रघुनाथ दास के सामने, मस्तक में दंड को रखा। क्या कहने लगे नित्यानंद प्रभु? चैतन्य भागवत ग्रंथ में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कराए, आए आए चोर तू दंड दिबू तोरे, बोलते आपने चोरी की हो, चोरी की हो आपने, दूसरा व्यक्ति का कुछ सामान आपने बिना बोलकर उठाकर लेकर गए, मतलब आपने चोरी की है। तो सोच लीजिए इतना बड़ा घर का आदमी होकर नित्यानंद प्रभु सबका सामने उनको चोर बोल दिया। आज का दिन में अगर कोई किसी को अपने अगर चोर बोले तो कान का नीचे मरेंगे कस के थप्पड़। लेकिन नित्यानंद प्रभु का मुखारे विंदे से जब इस चोर शब्द निकले तब रघुनाथ दास बहुत आनंदित हो गए सुनकर, जी आज मेरे जीवन धन्य हो गए, आज मेरे जीवन को मैंने धन्य कर लिया हूं कि नित्यानंद प्रभु स्वयं मेरे को कृपा कर दी, अभी निश्चित रूप से मेरे को कृष्ण प्रेम प्राप्त में कर सकता हूं, चैतन्य महाप्रभु मेरे को जरूर कृपा करे। तो नित्यानंद प्रभु कहने लगे कि रघुनाथ आपने एक नंबर वन चोर और नंबर वन थिप। सब भक्त समाज एकदम आश्चर्यचकित हो गए बात सुनकर, क्योंकि गौड़ीय साहित्य में पांच जगह है जिसको कहते हैं कि गौड़ बंग भूमि। इस पांच जगह जिसको नाम है कि पंचम धाम, गौड़ पंचम धाम। इस गौड़ीय पंचम धाम का महत्व श्री प्रभुपाद ने बड़े अच्छे तरीके से चैतन्य चैतन्य ग्रंथ में मध्य लीला में इसका वर्णन किया है, जिसके बाद चैतन्य चैतन्य है तो कृपा करके पढ़ लीजिएगा। ये गौड़ीय पंचम धाम किसको बोलते हैं? गौड़ धाम इस शब्द का साथ हम लोग परिचित है, नवद्वीप धाम इसका साथ हम लोग परिचित है, गौड़ मंडल इसके साथ हम लोग परिचित है, लेकिन गौड़ पंचम धाम, इस गौड़ीय पंचम धाम में जो व्यक्ति अगर एक रात के लिए भी रुकते हैं, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस गौड़ीय पंचम धाम में कोई भी एक धाम में जाकर अगर एक रात में जाकर अगर एक सेकंड के लिए भी कोई व्यक्ति रुकते हैं तो निश्चित रूप से इसी जीवन में गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर सकते हैं। इस गौड़ीय पंचम धाम का इतना महत्व है। तो कौन सा है वो गौड़ीय पंचम धाम? शास्त्र में वर्णन किए कि गौड़ बंगे नियोजित पंचम धाम नवद्वीप धामे महाप्रभुर जन्म है, काटोआर ताहार धाम जानिबे निश्चय एक चक्र जन्मभूमि खड़दहे वास अद्वैत प्रभुर धाम शांतिपुर है। ये पांच है गौड़ीय पंचधाम। क्या क्या है ना? महाप्रभु का जन्म स्थान श्री मायापुर धाम पहला पंचधाम का पहला धाम। दूसरा धाम कौन सा है? काटुआ धाम, जहां पे स्वयं महाप्रभु सन्यास लिए। ये काटुआ और मायापुर ये दोनों का सर गौड़ीय वैष्णव समाज परिचित है। लेकिन तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा कौन है? तीसरा है एको चक्र जन्मभूमि खड़दहे वास। एको चक्र है तीसरा गौड़ धाम, जहां पे स्वयं नित्यानंद प्रभु अपने को प्रकटित किए। और चौथा है खड़दह धाम, जहां पे मैंने पानियाटी के बारे में चर्चा कर रहे थे उसी पानियाटी का नजदीक में है खड़दह। इसी खड़दह में नित्यानंद प्रभु शादी विवाह होने के बाद बहुत समय तक इसी खड़दह गांव में उन्होंने रुके थे। आज तो खड़दह गांव नहीं है, बड़ा टाउन बन गए, बड़ा बड़ा टावर बन गए, कोई जंगल वगैरह नहीं है, गंगा बहुत दूर तक पहुंच गए थे। तीस तो कहते कि खड़दह धाम। और पांचवा धाम जो है वो है शांतिपुर धाम, जहां पे अद्वैत आचार्य प्रभु लीला विलास किए थे। महाप्रभु का सन्यास हो जाने के बाद नित्यानंद प्रभु छल के द्वारा महाप्रभु को लेकर आए थे काफी श्री शांतिपुर धाम में। किसके लिए लेकर आए? कि इसका ऊपर अलग अलग शास्त्र में अलग अलग आचार्य विस्तारित रूप से इसका वर्णन किया कि छल के द्वारा महाप्रभु को न लेकर आए थे, क्यों ना अद्वैत आचार्य प्रभु को दर्शन दिलाने के लिए, आठ सची माता तथा मायापुर धाम वासी को दर्शन दिलाने के लिए नित्यानंद प्रभु छल के द्वारा महाप्रभु को इसी शांतिपुर धाम में लेकर आए। जब सन्यास हो गए तो महाप्रभु सोचने लगे कि मेरे को अभी वृंदावन जाना है, तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को लेकर आ गए। तो जमुना का तट में आए, तो जमुना का तट में बातचीत करते 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 उन्होंने एक नाव में बैठा दी, और उसी जमुना से नाव में बैठकर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों पहुंच गए थे शांतिपुर धाम में। जब शांतिपुर में आए, शांतिपुर निकल, नित्यानंद प्रभु को पता नहीं था, चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं था कि मैंने शांतिपुर पहुंच गए। इसी शांतिपुर में जब आए तब देखा कि अद्वैत आचार्य प्रभु एक दूसरा नाव में बैठकर श्री चैतन्य महाप्रभु का गौड़ होरी बोलना चालू कर दिया। इसका पर वासुकोष ठाकुर ने बहुत ही सुंदर एक भजन लिखे कि नित्यानंद प्रभु को देखकर, श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर अद्वैत आचार्य का मन में जो भावना प्रकटित हुई थी, इसका पर वासुकोष ठाकुर ने एक बहुत ही सुंदर भजन लिखा। आज सर्वम वचन जी लिखे नव गौड़ वरम। तो जब अद्वैत आचार्य को देख लिए नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, तब महाप्रभु कहने लगे, अरे आप कैसे वृंदावन पहुंच गए? तब तो अद्वैत आचार्य प्रभु हंसना चालू कर दी। तो इसी हंसने को देखकर शास्त्र में बहुत सुंदर लोचन दास ठाकुर इसका वर्णन किए कि महाप्रभु क्रोधित हो गए थे थोड़ा। जब महाप्रभु क्रोधित हो गए तो नित्यानंद प्रभु कहने लगे कि आपको अभी क्रोधित शोभा नहीं देखते हैं, आपको शांत रहने चाहिए। फिर भी महाप्रभु क्रोधित होकर तब उन्होंने समझ गए कि ये नित्यानंद प्रभु छल के द्वारा मेरे को वृंदावन बोलकर ये शांतिपुर में लेकर आए। आज जिस नाम में उन्हें लेकर आए थे ये जमुना नहीं थी, ये स्वयं गंगा देवी है। नित्यानंद प्रभु पहले अद्वैत जी को बोल के रखे थे कि आप दूसरा नाव तैयार करके रखना, और महाप्रभु के लिए दूसरा कुछ कपड़ा वगैरह रख देने का। तो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब पहुंच गए तब अद्वैत आचार्य एक दूसरा नाव और साथ में महाप्रभु को पहनने के लिए बहुत सारे कपड़ा वगैरह लेकर आए। तो इसी कपड़ा को देखकर महाप्रभु को ऐसे ही नित्यानंद प्रभु के ऊपर मतलब गुस्सा आ गए, लेकिन गुस्सा को प्रकटित नहीं कर पाते थे। तो उनका हाथ से, अद्वैत आचार्य का हाथ से महाप्रभु ने कपड़ा को छीन लिया। छीन कर अपना जो कोपिन, वो कोपिन उन्होंने दे दिया नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु इतना आनंदित हो गए कि मेरा जीवन आज धन्य हो गए कि महाप्रभु मेरे को कोपिन के द्वारा मेरे को आलिंगन कर लिया। उसी कोपिन को लेकर महाप्रभु कहने लगे, नित्यानंद प्रभु कहने लगे कि मेरा जीवन आज धन्य हो गया इसका। तो बाद में अद्वैत आचार्य मायापुर से सोची माता को बुलाया है। सोची माता अकेली नहीं आई, साथ में दवयंती देवी जो कि राघव पंडित, जहां पे पहले नित्यानंद प्रभु पहुंच गए थे पानीहाटी में, राघव पंडित के घर में। तो राघव पंडित के घर में पहुंचने के बाद, पहुंचने का पहले इसी पानीहाटी में रघुनाथ दास को उनके दंड दे दी। कौन सा दंड दी? कहने लगे कि आपने चोरी की है, महाप्रभु एक संपद मेरे लिए, और मेरे को बिना पूछकर आप महाप्रभु को चुराने के लिए प्रयास कर रहे हो, इसके लिए आप दुनिया में सबसे बड़ा चोर व्यक्ति हो, यू आर ए नंबर वन थिप। तो मैंने आज आपको पकड़ लिया, तो आज आपको कुछ दंड लेना है। कौन सा दंड मिले उनको? नित्यानंद प्रभु उनको दंड दिए कि मेरे साथ जितना पार्षद बिंदु है सबको आज अच्छे तरीके से आप चुरा दूधी खिला दो, जिसको कहते कि पानी आटी चिरा दूधी उत्सव। इस पानी आटी चिरा दूधी उत्सव के द्वारा रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्ति थी, और नित्यानंद प्रभु का कृपा के द्वारा अंतिम में रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु का कृपा प्राप्ति। इसके लिए कहते कि नीताएर करुणा होइले ब्रजे राधा कृष्ण पावे, और कली युग में राधा कृष्ण का जुगल मिलन रूप जो है वो है श्री चैतन्य महाप्रभु, जिसके लिए किसी को अगर चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त करना है तो पहले नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए हम लोग गाते हैं निताई दूर। तो निताई नितान तो का टीपा पहले हम लोग को प्राप्त करना चाहिए। अरे रघुनाथ दास गोस्वामी घर घर में जाकर उन्होंने भीख मांगा कि आप चाहे तो आप मेरे को आप खरीद कर लो, आपका घर में रहकर मैं आपका सेवक रूप से मैंने आपका सेवा करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन में एक ही इच्छा है कि आपसे चैतन्य महाप्रभु का नाम आप एक बार उच्चारण करो, आप महाप्रभु का नाम को जप करो, आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। तो देखिए बोलते हैं इसको भाव जाड़े देखे तारे कहे दंते तीन धोरी आमारे तिनिया लो भजो गौर हो। जिसको भी मिलता है रघुनाथ दास गोस्वामी सबको कहने लगे कि चाहे तो आप मेरे को आपका दास शिखर कर आपका घर में मैं कृतदास बनकर आपका घर में मैं आपको सेवा करना चाहता हूं, लेकिन आप एक बार कम से कम महाप्रभु का नाम आप उच्चारण करो और जप करो भजो गौर हो। इसके लिए कृष्ण भावना का जो मूल होता है वह है नित्यानंद प्रभु का कृपा पहले हम लोग को प्राप्त करना। जैसे एक पेड़ बनते हैं, चलो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर एक पेड़ में पूरा पेड़ का भार को किसका हाथ में रहता है ना, जो जो मूल रहता है रूट जिसको बोलते हैं उसके ऊपर रहता है पूरा एक पेड़। जैसे एक बहुत बड़ा एक टावर बनाए तो टावर बनाने का पहले रूम बनाने का पहले बहुत अच्छे तरीके से पिलर वगैरह बनता है, स्लैब होता है, सब कुछ होता है। तो इस पिलर अगर कंप्लीट नहीं बने तो टावर कभी भी गिर सकते हैं। तार कृष्ण प्रेम को अगर कंप्लीट रूप से आपका हृदय में पकड़ के रखने का है तो पहले सबको नित्यानंद प्रभु का कृपा होना चाहिए। नितायर करुणा होइले ब्रोजे राधा कृष्ण। तो यही नित्यानंद प्रभु एक चक्र धाम में हराई बंडी तथा पद्मावती देवी के घर में आपने प्रकट किए थे। चैतन्य भागवत ग्रंथ में वर्णन किए है कि 10 महीना 10 दिन में बच्चा प्रसव होता है, लेकिन 10 महीना 10 दिन में बच्चा प्रसव होने का पहले एक प्रसव जंतना होते हैं जिसको बोलते हैं कि पेन, लिवर पेन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लिवर पेन। तो लिवर पेन होने का समय माँ को पता हो जाती है कि अभी मेरे को प्रसव होने का एकदम टाइम आ गया, तब उसको लेकर जाना पड़ता है। शास्त्र में वर्णन की कि जैसा महाप्रभु प्रकटित हुआ था 13 महीना में, जो कि स्वाभाविक रूप से 10 महीना 10 दिन में बच्चा को प्रसव होना चाहिए था, लेकिन महाप्रभु प्रकटित हुए थे 13 महीने के बाद। ठीक इसी तरीका से पद्मावती देवी जब 8 महीना गर्भवती थी, इस कहानी का बहुत ही अच्छे तरीके से बीरोजा उपाध्याय बोल के नित्यानंद प्रभु के परम प्रिय शिष्य जो कि जिनका परंपरा धारा आज भी एक चक्र गांव में है, उनका किताब है जिसमें लिखा है कि नित्यानंद आनंद कथा, नित्यानंद कथा इसमें वर्णन की है कि बीरोजा उपाध्याय कि 8 महीने का समय पद्मावती देवी का प्रसव यंत्र लेवर पेन चालू हो गई। जब 8 महीने में लेवर पेन चालू हो गए तब हराई पंडित सोचने लगे कि पद्मावती का इतना जल्दी कैसे लेवर पेन हो सकता है। आज का दिन में जैसा होता है कि हर महीने में को माँ को लेकर जाना पड़ता है नर्सिंग होम में, स्कैनिंग करो, ये करो, सोनोग्राफी करो, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन उसी समय ऐसा कुछ भी नहीं था। लेवर पेन होता है मतलब दाईमा बोलता है, दाईमा जिसके द्वारा बच्चा का प्रसव होती है। तो पद्मावती देवी हराई पंडित को कहने लगे कि देखो मेरे को लगता है कि मेरा गर्भ में जो आ रहा है वो ऐसा कोई मामूली बच्चा नहीं है, कि 8 महीने में मेरे को गर्भ जंतना जो लेवर पेन जिसको बोलते हैं चालू हो गए। तो एक दाई माँ को बुला है। इसी ग्रंथ में वर्णन है कि इस दाई माँ का नाम थी शोभा देवी। तो शोभा देवी को बुलाकर लेकर आए हराई पंडित हराई ओझा। जब लेकर आए तब पद्मावती देवी को उन्होंने देख लिया। तो शोभा देवी उनको देखने के बाद, पद्मावती देवी को देखने के बाद कहने लगे कि आपका घर में जो बच्चा है ना, वो बच्चा ऐसे कोई मामूली नहीं है, वो बच्चा निश्चित रूप से भगवान का कुछ अंश हो। तब पद्मावती देवी पूछने लगे कि दाई माँ, मेरे को इतना जल्दी कैसे मेरा ये गर्भ जंतना चालू हो गया? वास्तविक रूप से जो 10 मास 10 दिन में बच्चे को प्रसव होना चाहिए था, नित्यानंद प्रभु पद्मावती गर्भगृह से उन्होंने 8 महीना 18 दिन, इस किताब में वर्णन है कि 8 महीना 18 दिन नित्यानंद प्रभु प्रकटित हो गए। जब 8 महीना 18 दिन में नित्यानंद प्रभु प्रकटित हो गए थे एक चक्र गांव में, एक चक्र धाम, तब पूरा गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कौन बच्चा आए मेरा गांव में जो कि 8 महीना 18 दिन में प्रसव हो गए। तब पूरा गांव वाले आपने आने लगे, देखना चालू कर दिए। तो हराई पंडित का घर में उसी बच्चे को देखने के लिए एक महान तपस्वी, एक मुनि आए। मुनि का नाम है गर्गाचार्य। कोई कोई शास्त्र में वर्णन है कि इस गर्गाचार्य पहले गर्ग मुनि थे, जो कि कृष्ण बलराम का नाम रखे थे, कृष्ण और बलराम। एक गर्ग मुनि गर्गाचार्य रूप लेकर इसी हराई पंडित के घर में पहुंच गए। इस गर्गाचार्य ऐसे एक चक्र गांव में भीख मांग रहे थे, घूम रहे थे, क्योंकि मैंने पहले वर्णन की कि एक चक्र ग्राम जो धाम जो है, इसे महाभारत में इसका उल्लेख है, क्योंकि स्वयं भगवान रामचंद्र अज्ञातवास का समय इसी एक चक्र गांव में थे, जिसके लिए महाभारत में इसका भी उल्लेख है। बहुत ही अच्छे तरीके से श्लोक के द्वारा इसका वर्णन किया। इसी गर्गाचार्य पहुंच गए थे उनके घर में, महान महान तपस्वी जोगी व्यक्ति। तो पहुंचने के बाद उन्होंने बच्चे को देख ली। पद्मावती देवी को कहने लगे कि पद्मावती, आपका घर में जो बच्चा है ना, ये बच्चा सबको आनंद देने के लिए आए, सिर्फ आपको दर आपको आनंद नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, पूरा विश्व समाज को वो आनंद देने के लिए इसी धरा धाम में उन्होंने अपने को प्रकटित कर दिया, जिसके लिए मैंने ये बच्चे का नाम रखो नित्यानंद। उसी गर्गाचार्य का धरा नाम रखे हुए नित्यानंद। और बाद में हराई पंडित इसी आनंद शब्द को पकड़कर जो अष्टम संतान, जो आत्मा बच्चा उनको थी, सबका साथ साथ नित्यानंद प्रभु का कृपा के कारण सबका साथ साथ आनंद शब्द को उन्होंने युक्त ऐड किया, जैसे कृतां कृष्णानंद पूर्णानंद मैंने पहले बताया। तो बच्चा को लेकर आज का दिन में बच्चा जब प्रसव हो जाते हैं, माँ क्या करते हैं, सीधा नर्सिंग होम से अपना बेडरूम में लेकर आते हैं। लेकिन उसी समय की ऐसा व्यवस्था नहीं था समाज में, बच्चा को 21 दिन तक एक घर में रखना पड़ता था, जिस घर में कोई भी बाहर का आलो ना आए, जिसको कहते कि श्रुति का गृह। जिस श्रुति का गृह में दाई माँ शोभा देवी, पद्मावती देवी और नित्यानंद प्रभु का जो नाड़ी वगैरह होता है, जिसको कटिंग किया था, और आजकल क्या होता है, उसी नाड़ी को जो कटिंग करने के बाद जो भी कुछ रहते हैं उसको क्या करते हैं, ना बंडल बना के फेंक देते हैं बाहर में। लेकिन शोभा देवी को पता हो गई थी कि ये जो बच्चा है इसका हर चीज ऑस्पिशियस है, जिनके लिए सब कुछ उन्होंने इकट्ठा करके एक मिट्टी का अंदर एक कुप बनाकर उसका अंदर डाल दी थी, जिसका नाम है नाड़ी पोता। इस नाड़ी पोता में जिन्होंने एक चक्र धाम में गए उनको जरूर याद होगा कि नाड़ी पोता में जहाँ पे ये शोभा देवी उसको रख दी थी, उसका ऊपर एक बहुत ही सुंदर एक कमल का वृक्ष, कमल का झाड़ बना। और इसी कमल का झाड़ जब बड़ा हो गए, नित्यानंद प्रभु जब बड़ा हो गए थे, मतलब 7 साल 8 साल उम्र हो गए उनका, तब उसी समय नित्यानंद प्रभु जाकर बाल्य लीला को प्रकट की थी अपना मित्र के साथ। अरे पद्मावती देवी बचपन से डर थी उनको, मतलब कि मेरा पहला पुत्र है नित्यानंद, और गर्ग आचार्य ने नाम रखे गए नित्यानंद। तो जब उन्होंने नाम रखे गए नित्यानंद, कभी भी शास्त्र में वर्णन किए कि बचपन से जब से ये प्रकटित हुए नित्यानंद प्रभु, कभी भी उनको रोना का ये स्वभाव दिखा नहीं पाई। तो माता पद्मावती देवी को डर लगी मन में कि किसी के द्वारा अगर नजर लग गए तो क्या होगा मेरा हाल बच्चा का। इसके लिए तत्कालीन समय में आज भी एक विधि होता है, बच्चा को भूत प्रेत इसी सब से दूर में रखने के लिए एक षष्ठी पूजा होता है, जिसको कहते हैं कि सूती का षष्ठी। इस सूती का षष्ठी का वर्णन चैतन्य मंगल ग्रंथ में लोचनदास ठाकुर वर्णन के विस्तारित रूप से कि किस तरीका से नित्यानंद प्रभु का सूती का षष्ठी उत्सव बनाए थे। एक चक्र गांव सूती का षष्ठी का अर्थ होता है बच्चा को 21 दिन बाद बाहर लेकर आना पड़ता है। और आज जैसे कोई बच्चे जब पैदा हो जाते हैं, बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य बनाने के लिए कोई ऑलिव ऑयल लेकर आए, अलग अलग तरीके से क्रीम लगाओ। उसी जमाने में ऐसा क्रीम का जमाना नहीं था, कुछ भी कुछ ऑलिव ऑयल का जमाना नहीं था, सिर्फ राई का तेल डालते थे और राई का तेल में डालकर बच्चे को बाहर में लेकर आते थे धूप में। और धूप में लेकर बच्चा को कुछ अलग अलग पंच शस्य बोलता है, इसी पंच शस्य के द्वारा जैसा राई का हो अलग अलग तरीके से लंग बगड़ ये सब डालकर बच्चा के एक पूजा होते है 21 दिन में। इसका मैं विस्तृत रूप से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो सूती का षष्ठी पूजा, जिस दिन सूती का षष्ठी पूजा हो गई, इसी सूती का षष्ठी पूजा होने के बाद, ये सूती का षष्ठी पूजा शाम को होता है, दिन में नहीं होता है। सूती का षष्ठी का ऊपर श्रील प्रभुपाद जी एक बंगाली लेक्चर में वर्णन किए थे कि ये सूती का षष्ठी पूजा के द्वारा जब बच्चा अगर बड़ा होने के बाद कभी भी उसको कोई भूत वगैरह पकड़ नहीं सकते, और बच्चा एकदम डगर डगर बोलता है, जिसको हमने शास्त्र वाले। तो ये सूती का षष्ठी पूजा प्रभुपाद जी विस्तृत रूप से उसी बंगाली लेक्चर मैंने सुना था, उसमें वर्णन किए थे। क्योंकि आज भी बंगाल में प्रचलित है कि बच्चा प्रसव होने के बाद 21 दिन में ये सूती का षष्ठी पूजा वगैरह होते रहते हैं बच्चा का मंगल करने के लिए। तो हराई पंडित ये सूती का षष्ठी पूजा की, बड़े धूमधाम से सूती का षष्ठी पूजा हो गए। और इसी एक चक्र गांव में नित्यानंद प्रभु का बहुत सारी लीला का वर्णन किए हैं। एक जगह है जिसका नाम है हाटू गोड़ा, मतलब हाटू गोड़ा का होता है कि ऐसा जो पैर है, पैर को एकदम बेंड करके बैठने का, जिस जगह का नाम है हाटू गोड़ा। और इसी हाटू गोड़ा में नित्यानंद प्रभु का बहुत सारे बाल्य लीला प्रकट की थी उसी जगह। कभी नित्यानंद प्रभु राम अवतार साज रहते थे, कभी भगवान नरसिंहदेव बन जाते थे, कभी हनुमान जी बन जाते थे, कभी अलग अलग रूप लेते थे। लेकिन किसी को पता नहीं था, बच्चा है इतना कम उम्र का है, कैसे पता है कि भगवान नरसिंहदेव कौन है, भगवान रामचंद्र जी कौन है। इसी हाटू गोड़ा में बैठकर आपने मित्र के द्वारा उन्हें बहुत सारे लीला विलास की। और इसी हाटू गोड़ा में नित्यानंद प्रभु आपने मित्रों के साथ एक साथ बैठकर नाश्ता वगैरह, जिसको बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट करते थे। इसी ब्रेकफास्ट के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी वर्णन किए कि नित्यानंद प्रभु का सबसे अधिक एक प्रिय एक ब्रेकफास्ट था, जिसका वर्णन उन्होंने किए है, जिसको हम लोग परिचित है इसी शब्द के द्वारा, ताल माखना बोलते हैं। बंगाली में इसका नाम है खई, तो श्रील प्रभुपाद जी 1973, 74, 75 ये 3 साल नित्यानंद त्रयोदशी तिथि में अपना हाथ में ये दाल मखना का खीर बनाकर श्रील प्रभुपाद जी नित्यानंद प्रभु को ऑफरिंग किए थे। ये कहानी मैंने श्रील प्रभुपाद जी के अंतरंग प्रिय शिष्य है जिनका नाम है सत्यधन्य प्रभु, उन्होंने एक बार बताया इसे ताल महंत का बाहर था। बाद में बंगाली लेक्चर में मैंने सुना था जिसमें वर्णन किया कि ताल माखना नित्यानंद प्रभु का सबसे प्रिय अधिक प्रिय होता है। तो आज का दिन में श्रील प्रभुपाद अपना हाथ के द्वारा ये ताल माखना बनाकर नित्यानंद प्रभु को ऑफरिंग की। और इसी एक चक्र में जाकर नित्यानंद प्रभु का बहुत सारी लीला उन्होंने प्रकट की थी इसी जगह में। और वही गढ़ आचार्य जिन्होंने उनका नाम रख दिए नित्यानंद प्रभु, थोड़ा समय बाद थोड़ा साल बाद फिर इसी गढ़ आचार्य उसी एक चक्र गांव में पहुंच गए। आकर एक जगह है एक चक्र में जिसका नाम है विश्वरूप तालाब। जिन्होंने गए उनका पता होगा कि विश्वरूप तालाब में विश्राम स्थली बोलती है। उसी जगह में गर्ग आचार्य 7 दिन तक रुके थे और हराई पंडित और पद्मावती देवी दोनों ने अच्छे तरीके से उनका देखभाल की। और देखभाल करने के बाद अंतिम दिवस जब पहुंच गए तब गर्ग आचार्य हराई पंडित को पूछने लगे कि नहीं, हराई पंडित गर्ग आचार्य को पूछने मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूँ। इसी चर्चा का ऊपर अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग तरीके से वर्णन है। एक एक ग्रंथ में वर्णन किए कि महाप्रभु का बड़ा भाई विश्वरूप उसी विश्राम तला में आकर विश्राम किए थे जिसके लिए उस जगह का नाम है विश्वरूप तला, नहीं तो विश्राम तला। कोई ग्रंथ में वर्णन किए कि गर्ग आचार्य उधर आके 7 दिन रुके थे और अंतिम दिवस में हराई पंडित के पास भीख मांगे नित्यानंद प्रभु। एक एक ग्रंथ में एक एक तरीके से वर्णन है कि कोई शास्त्र ग्रंथ में वर्णन की कि गर्ग आचार्य पहुंच गए थे, कोई जगह में वर्णन है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का बड़ा भाई विश्वरूप पहुंच गए थे एवं अंतिम दिवस में हराई पंडित के पास भीख मांगे। और यही हराई पंडित के घर में जब हराई पंडित का शादी विवाह हुए थे, शादी विवाह का लीला लोचनदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु ग्रंथ में एकदम विस्तृत रूप से इसका वर्णन है। तो यही जगह में एक चक्र गांव में नित्यानंद प्रभु बाल्य लीला बहुत ही प्रकट की थी। बाल्य लीला का एक जगह का नाम है कानीमाली झोला। कानीमाली झोला जिनने गए उनको पता होगा कि कानीमाली झोला का जगह का नाम जो है आज का दिन में एक चक्र में इस्कॉन का बहुत ही सुंदर मंदिर है। उसका थोड़ा पीछे एक जगह है जिस जगह का नाम है कानीमाली झोला। इस कानीमाली झोला में हराई पंडित बचपन में नित्यानंद प्रभु को लेकर जाते थे उसी जगह में। जैसा होता है ना कि बच्चा जब खेलने का लायक हो जाते हैं तो माँ बाप पहुंच जाते हैं गार्डन में बच्चे को खिलाने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। तो हराई पंडित लेकर गए, साथ साथ पद्मावती देवी भी गई थी साथ में। तो पहुंचने के बाद उसी जगह में कालीमाली झोला में तो नित्यानंद प्रभु पूरा शरीर में एकदम काला 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 मिट्टी लगा दी, क्योंकि एक चक्र गांव एक चक्र धाम इसका और एक नाम है राढ़ देश। राढ़ का अर्थ होता है लाल मिट्टी। तो हराई पंडित और पद्मावती देवी दोनों लेकर गए थे उनको इस कालीमाची जगह में। हाँ, नित्यानंद प्रभु अपना मित्र के साथ जब खेलना चालू कर दिया उसी जगह में, जब खेल रही थी साथ में तो उन्होंने पूरा शरीर में वो लाल मिट्टी लगाया। तो लाल मिट्टी पूरा शरीर में लगाने के बाद पद्मावती देवी ने बड़ा गुस्सा हो गई, मतलब इतना छोटा लड़का देखा पूरा शरीर में मिट्टी 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 कर दी, मैं कैसे इसको साफ करूं, मैं क्या करूं। जैसा होता है कि बच्चा अगर कुछ करते हैं तो माता पिता कितना गुस्सा हो जाती है। तब पद्मावती देवी गुस्सा हो गई तुरंत, लेकिन हराई पंडित कहने लगे कि आप शांत रहो, आपने सिर्फ इस राड मतलब इसी मिट्टी को ही आप देख रहे हो, मिट्टी का अंदर भी कुछ है वो अच्छे तरीके से देखो, ढूंढो क्या है उसका अंदर। तो पद्मावती देवी एकदम आश्चर्यचकित हो गई ये बात सुनकर, कहने लगे मेरे को तो सब मिट्टी दिखाई पड़ रहा है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं साथ में। तो हराई पंडित पूछने लगे कि आप जरा अच्छे तरीके से ध्यान से इसको देखो। इसका वर्णन नितान्त चरित कथा जो कि विधुभूषण बाबाजी महाराज बोल के गौड़ीय आचार्य है, विधुभूषण बाबाजी महाराज जिन्होंने किताब लिखी है नितान्त चरित कथा, जिसने इसका वर्णन किया है, बंगाली में है वो किताब। तो हराई पंडित पूछने लगे कि आप देखो जरा अच्छे से, देखो क्या है इसमें। कहते मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चलता क्या है इसका अंदर, मतलब अच्छे तरीके से ध्यान देकर देखो। ये जो पूरा शरीर में लाल मिट्टी लगा दिए, लेकिन साथ साथ देखो पूरा शरीर में उनका हलधर और तुलसी का चरण है, तुलसी का चिन्ह है देखो। तब पद्मावती देवी हराई पंडित का मुखाड़ अरविंद से ये कथा श्रवण करने के बाद बच्चे को अपना गोद में ले लिए, साथ में लेकर अच्छे तरीके से जब साफ कर रहे थे तो देखा कि पूरा शरीर में नितंद प्रभु का हलधर का चिन्ह है और एक एक जगह में तुलसी पत्र का भी चिन्ह, जैसे तुल्ली होता है ग्रीन कलर का होता है हरा हरा कलर, तो उसी तरीके से हरा हरा कलर लाल का दिखाई पड़ता है। तो ये देखकर पद्मावती देवी एकदम आश्चर्यचकित हो गए सुनकर। तो उसी एक चक्र गांव में उसी समय एक महान ज्योतिष थे, तो हराई पंडित और ज्योतिष को बुलाकर लेकर आए साथ में। उसी ज्योतिष का नाम है ब्रह्मानंद। तो ब्रह्मानंद ज्योतिष पहुंच गए तो हराई पंडित भाग के उसको लेकर आए कि देखो मेरा बच्चे का पूरा शरीर में ऐसे हलधर का चिन्ह है और तुलसी पत्र का चिन्ह भी दिखाई पड़ रहा है। तो उसी ब्रह्मानंद ज्योतिष देखने के बाद कहने लगे कि हराई ये बच्चा आपका जो है ना, ये बच्चा ऐसे कोई मामूली नहीं है, ये साक्षात स्वयं भगवान आपका घर में प्रकटित हुए सिर्फ आपको आनंद देने के लिए नहीं, पूरा जगत को उद्धार करने के लिए बच्चा इसी एक चक्र धाम में प्रकटित हुए से आपका घर में आनंद देने के लिए नहीं आए, पूरा विश्व संसार को उन्होंने उद्धार करने के लिए आए, जिसके लिए नितान्त प्रभु का कृपा होने के बाद ही महाप्रभु किसी को कृपा बरसाते हैं। जगाई मधाई ने इतना पाप कर्म किए थे, इतने सारे पाप कर्म किए, माधाई क्रोधित होकर कहने लगे कि मेरा बिना चैतन्य प्रभु का नाम पूरा नवद्वीप धाम में प्रचार नहीं हो सकता है। नारतम दास ठाकुर इसके ऊपर भजन लिखे कि ताबोले की प्रेम देवो ना यदि मारी कुलसी करना ने सार जो के यदि जगाई माधाई ना थक तो तबे नी मायके की चित्त लगे। फिर भी जब नितान्त प्रभु को मारे, महाप्रभु सुदर्शन चक्र बुलाकर लेकर आए, लेकिन महाप्रभु नितान्त को कहने लगे आप शांत रहो, आपको ये शोभा नहीं देते, इसी कलियुग में आप आए ये अस्त्र लेकर नहीं आना चाहिए आपको, शांत रूप से शांत भाव से आपको सबको साथ मिलना है। तो नितान्त प्रभु की ये भाव को देखकर जगाई माधाई क्षमा मांग ली, लेकिन महाप्रभु क्षमा नहीं किए पहले, ये पहले आप जाओ जाके निताई के पास क्षमा मांगो, अगर निताई आपको अगर कृपा कर दी तो मैं आपको क्षमा करने के लिए तैयार। तो जगाई को पहले कृपा कर दी थी नितान्त प्रभु ने, अंतिम में माधाई को कृपा दी। तो दोनों पूछने लगे मैंने तो इतना सारे अपराध किए हूं, इतने सारे साधु संत को मैंने मारा हो पीटा हूं, मेरा क्या हाल होगा मेरा दोनों भाई। तो नितान्त प्रभु कहने लगे आप दोनों ये काम करो, अगर आप अपने जीवन को सुधारना चाहती हो तो इसी गंगा का तट में बैठकर कोई भी साधु संत कोई भी तीर्थ जाती आते तो उनको अच्छे तरीके से आप सेवा वगैरह कर दो, और इसी गंगा का घाट, इसी घाट को आप अच्छे तरीके से साफ वगैरह करते रहो, तब आपका अपराध मोचन हो सकता है। जिसके लिए नवोदित धाम का और एक नाम होता है अपराध मोचन क्षेत्र। कि नवोदित धाम ऐसे जगह है कि महाप्रभु महावदन्य अवतार और महाप्रभु को कृपा लेने के लिए नित्यानंद प्रभु स्वयं उपस्थित होते थे हर जगह में। नित्यानंद प्रभु अगर कृपा बसाए तो महाप्रभु तैयार हो जाता है उसको उद्धार करने के लिए। इसी तरीके से जगह मधाई को उद्धार किया। और महाप्रभु को मिलन कैसे हुआ नंदन आचार्य भवन में, कि समय हो गया मैं लास्ट 5 मिनट में बोल देता हूँ। ये नंदन आचार्य भवन में महाप्रभु ने सपने में देखा कि स्वयं कोई आए, स्वयं बलराम आए मेरे को मिलने के लिए, अपना पार्षद को बुला लिए शिवा संगन में, जाओ जाके ढूंढो देखो स्वयं बलराम कहाँ पे है। तो सब लोग गए, ढूंढते ढूंढते सब थक गए। रात को आके बोलने लगे कि महाप्रभु हम लोग ढूंढते ढूंढते थक गए लेकिन ऐसा कोई किसी को नहीं मिले कहाँ पे भी ना बदले। वो तो आपको नहीं मिले ना, तो ठीक है एक काम करो चलो काल हम लोग नगर संकीर्तन निकालते। कहते कि अद्वैत आह्वान है अद्वैत आचार्य प्रभु आह्वान किए थे भगवान को कि आप आओ आके इस कलयुग की वध जीव का उद्धार करो। आज नित्यानंद प्रभु का हुंकार ध्वनि में तब महाप्रभु कहने लगे ठीक है काल एक नगर संकीर्तन का आयोजन कर लो। नगर संकीर्तन का आयोजन किया, इसका पहले जो नगर संकीर्तन हुआ था चाणक्य जी के समय में, लेकिन शास्त्र में वर्णन किए हैं कि नंदनाचार्य का जो भवन जो कि मायापुर मंदिर से थोड़ा नजदीक में है नंदनाचार्य भवन, जिन्होंने नवोदय मंडल परिक्रमा किया उनको पता होगा कि नवोदय मंडल परिक्रमा का पहला चालू होता है एक नंदन आचार्य भवन से। शुरुआत में ऐसा नियम था कि आज तो 3-3, 4-4 ग्रुप बन गए हैं, इसके लिए नंदन आचार्य भवन शुरुआत में सब भक्तों के इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज से 5 साल पहले भी ऐसा नियम था कि नवोदय मंडल परिक्रमा चालू होगा नंदन आचार्य भवन से गौनिता के कृपा लेकर। तो महाप्रभु को जब पार्षद ने बुलाया कि ये सब नहीं मिल रहा है ऐसा कोई व्यक्ति को, ऐसा महान व्यक्ति महान पुरुष को नहीं मिले, बोलते ठीक है तो काम करो कल नगर संकीर्तन निकलो। तो पूरा गौरी पार्षद बिंदु गौरी समाज पूरा एक कट्टा होकर मृदंग करताल के साथ नगर संकीर्तन निकले। उसी नगर संकीर्तन जब नंदन आचार्य का भवन का सामने पहुंच गए थे, इसका पर बहुत तर्क होता है। कोई कोई कहते हैं कि प्राचीन मायापुर बोल के एक जगह है जहां से श्री चैतन्य महाप्रभु इसी नगर संकीर्तन पर निकले, और कोई कोई कहते हैं कि एक जगह है माधवतला, माधवतला से श्री चैतन्य महाप्रभु इस नगर संकीर्तन पर निकले थे। तो अलग अलग ग्रंथ में इसका अलग अलग वर्णन है। तो महाप्रभु के नगर संकीर्तन जब पहुंच गए थे पार्षद मिलने को लेकर नंदन आचार्य का भवन का सामने, कि महाप्रभु अंतर्जन उनको पता है कि मेरे साथ ये कृष्ण प्रेम को प्रचार करने के लिए कौन मेरा युग को मतलब एकदम सॉलिड पार्टनर जिसको बोलते। तो नंदन आचार्य भवन में जब पहुंच गए थे नित्यानंद प्रभु सॉरी चैतन्य महाप्रभु अपना पार्षद बिंद को लेकर, तब उन्होंने उधर बड़ा धूमधाम से कीर्तन चालू कर दिए थे। कि शिवास ठाकुर को कहने लगे सब बहुत सारे गौड़ियों के अष्टम भक्त बिंदु जो बड़ा धूमधाम से कीर्तन करो, और उसी कीर्तन का ध्वनि सुनकर नंदन आचार्य का भवन से सामने उपस्थित हो गए नित्यानंद प्रभु। आज जिसको देखकर स्वयं महाप्रभु उसको आलिंगन करना चालू कर दिए, तो सब लोग सोचने लगे कि स्वयं महाप्रभु जिसको आलिंगन कर रहे जिसको एकदम दंडवत प्रणाम कर रहे वही है नित्यानंद प्रभु। दूसरा दिन व्यास पूजा उत्सव था, तो महाप्रभु कहने लगे कि शिवा संगन में व्यास पूजा हो। तो शिवा संगन में व्यास पूजा तब बड़ा धूमधाम से सब चालू किए। तो शिवाज ठाकुर ने एक माला लेकर आए, तुलसी माला महाप्रभु अपने हाथ में रखकर स्वयं नितंब को गला में डाल दिए थे। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे नितंब प्रभु ऐसे कोई मामूली व्यक्ति हो सकते, उनका गले में क्यों डाल दिए पहले, ये भगवान का प्रसाद ही माला क्यों ऐसे डाल दिए। तो महाप्रभु कहने लगे कि ये गोली जीव को, कलीली जीव को उद्धार करने के लिए जो प्राण स्वरूप जो है वो है नित्यानंद प्रभु, जिनका कृपा बिना कोई भी कलि जीव में आपने को उद्धार नहीं कर सकता है। तो पहले इनका कृपा होना चाहिए, ये नित्यानंद प्रभु है आदि गुरु, जिस गुरु का माध्यम से हम लोग भगवान धाम पहुंच सकते हैं। कहते हैं कि नितायरो करुणा होइले ब्रोजे राधा कृष्ण पावे, और इसी कलिजुग में राधा कृष्ण का जुगल मिलन रूप जो है वो है महावदन अवतार, कलिजुग का पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। आज इसका कृपा प्राप्त करना है तो पहले नित्यानंद प्रभु का कृपा हम लोग को प्राप्त करना चाहिए, और नित्यानंद प्रभु का कृपा लेने के लिए सेम नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। दंते त्रिनोधरी जाड़े देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जैसे कि रघुनाथ दास से वर्णन किए कि अमरे किनिया लाओ भज गौर हरि, चाहे तो आप मेरे को आप खरीद कर लो, जाड़े देखे तारे कहे दंते त्रिनोधरी अमरे किनिया लाओ भज गौर हरि। अगर किसी को भी आपको मिले नम्र भाव से आप उनको कहिए कि महाप्रभु का नाम आप उच्चारित करो, आप महाप्रभु का नाम जप करो। तो देखो अगर इसी तरीके से ये नित्यानंद प्रभु ने शिक्षा भोजो गौर हो रही हमारे किनिया लाओ भोजो, चाहे तो आप मेरे को खरीद कर लो, आप मेरे को चाहे तो आपके घर में सेवक रूप कर रखो, मैं आपका सेवा करने के लिए जिंदगी भर तैयार हूँ, लेकिन आपसे एक करो आपका मुखारविंद जो कि भगवान के द्वारा अपने मुखारविंद को आपने प्रकटित किया, उसी मुखारविंद के द्वारा भगवान का नाम को आप उच्चारित करो, भगवान का नाम और भगवान ये दोनों में कुछ अंतर नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र को जप करो, तब देखो नित्यानंद प्रभु आपके ऊपर खुश रहेंगे। अगर नित्यानंद प्रभु आपके ऊपर खुश है, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो कि आपको एक इंच भी हिला सकते हैं, तो पहले नित्यानंद प्रभु का कृपा होना चाहिए। आनंदों का जो नित्यानंद आदेश जो है भजो गौर हो, गौरंग मोहो का भजना करो और उनको नाम जप करते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नित्यानंद चरित कथा वर्णन ये तो पूरा दिन क्या पूरा जीवन भर आप इसका विराम नहीं दे सकते हैं, लेकिन समय का हिसाब से चलना पड़ता है, आज सब उपवास है, इसके लिए मैं इस नित्यानंद चरित कथा को इधर ही विराम दे रहा हूँ। कभी अगर फिर फुर्सत मिले तो मैं विस्तृत रूप से इसका वर्णन करूँगा। हरे कृष्णा। नित्यानंद आविर्भाव तिथि की, नित्यानंद त्रयोदशी की, गौर प्रेमानंद जी सबके लिए प्रसाद है।